शिष्टे ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं दीनभुवन के मुकुटमणि गुणानन्तमय नमो सिद्ध परमात्मा वीतराग अविरु। सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार जो हमारे आचार्यों ने ग्रंथ रचना की है उसी के आधार से यहाँ हम तीन लोक का स्वरूप देख रहे हैं। अधोलोक की बात करते हुए हमने नारकियों का विस्तार से वर्णन देखा है और अभी हम भवनवासी वंतरों की बात कर रहे हैं। देवों के चार प्रकार देखे हमने, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये वैमानिकों में भी दो प्रकार है, कल्पवासी और कल्पातीत। इनको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कल्पवासी है और अभी हम जो भवनवासी है उनमें 10 प्रकार के देव पाए जाते हैं। उनके ग्रेडेशन पद अलग अलग है। इंद्र होते हैं, उन्हीं के समान प्रतिन्द्र है, ये हमने कल देखा था। लोकपाल होते हैं, यानी प्रत्येक दिशा में एक एक उनका लोकपाल होता है। उसके बाद हमने देखा था कि वो 33 होते हैं, 73 पेज पर हम आए थे। उसके बाद सामानिक, तनुरक्षक, फिर पारिषद नाम के देव होते हैं। पारिषद यानी हमारे जैसे यहाँ लोकसभा में वगैरह बैठते हैं ना, वैसे वहां पर भी उनकी सभा में बैठने वाले होते हैं। उसमें भी अंदर के सर्कल में बैठने वाले, मध्य में और फिर लास्ट में बैठने वाले, उसमें भी तीन प्रकार के, अंत पारिषद, मध्य पारिषद और बाह्य पारिषद। अब उसके बाद अनेक जाति के जो देव होते हैं, जैसे हाथी की सेना, घोड़ों की सेना, ऐसे अलग अलग सेनाएं, जो देव ही अपने शरीर से विक्रिया से सैकड़ों हजारों हाथी या घोड़े बना लेते हैं, तो ये उनकी सेना, ये तो देवों का वैभव है, तो वो भी पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ स्वर्गों में कोई भी ये जो त्रिव्यंजन हाथी घोड़े आदि एक इंद्रिय पाए जाते वो अलग, परंतु अन्य कोई द्विंद्रिय आदि ये त्रिव्यंजन वहाँ नहीं पाए जाते। तो हम जब कहेंगे ऐरावत हाथी है, जो हाथी है, घोड़े है, वो क्या है? सारे देवों ने ही विक्रिया से रूप लिए हुए हैं। तो प्रकीर्ण जाति के देव हो, जैसे हमारे यहाँ नगरवासी है, आम जनता, वैसे वहाँ पर प्रकीर्णक होते हैं। उसके बाद दास दासी जैसे, वो अभियोग्य जाति के देव होते हैं। और लास्ट में किल्विशक देव होते हैं कि वो जो गायनादि क्रिया से आजीविका करते हैं। आजीविका करते हैं, उनका ये गायनादि ही करते रहते हैं। यहाँ आजीविका नहीं, वहाँ कोई पैसे का, डॉलर का व्यवहार नहीं चलता। वही उनका वैभव है, दास दासी वगैरह सब देवों में भी। अपने यहाँ जैसे राजा के दास दासी होते हैं, वैसे उनके भी हाँ देव ही होते हैं। परंतु अभी हमने ये ग्रेड्स देखे ना, तो वो वैभवशाली जो इंद्र है और बाकी कैसे उनके नौकर है, उनकी आज्ञा में उनको रहना पड़ता है और वहाँ कोई स्ट्राइक बैक नहीं चलता है। अभी जो हमने 10 प्रकार देखे ना, उसमें से व्यंतरों के 8 ही प्रकार होते हैं। लोकपाल और त्रायस्यंश उसमें नहीं होते हैं। बाकी हमने भवनवासी में भी 10 प्रकार और वैमानिकों में भी 10 प्रकार देखे, कल्पवासियों में। अब यहाँ जो उनके शरीर है उसको वैक्रीय शरीर कहते हैं, देवों के और नारकियों के वैक्रीय शरीर है। और मनुष्य और तिर्यंचों का कौन सा है? औदारिक शरीर है। ये तो आपने सुना होगा पहले, नारकियों का वैक्रीय शरीर और देवों का वैक्रीय शरीर, इसमें क्या डिफरेंस है? नारकियों के तो सभी अशुभ कर्मों का ही उदय चलता है। तो विक्रिया करने वाला भले है, परंतु वो कैसी विक्रिया होती है, छोटी बड़ी होगी, एक ही शरीर अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु वो अनेक शरीर नहीं बना सकता। देवों में अनेक शरीर बना सकता है, उसको पृथक विक्रिया कहते हैं। और नारकी की कैसी विक्रिया होती है, अपृथक। हाँ, भी शरीर को ही वो शस्त्र बना देगा, ऐसे हो सकते हैं। शरीर को ही कुछ अन्य रूप धारण करेगा, परंतु वो एक ही शरीर बनाएगा। और वो कैसा है, दुर्गंधित है, रोगों से युक्त है, वगैरह वगैरह। और देवों के शरीर कैसे हैं, वो तो शुभ टाइप के, उसमें सारे शुभ कर्मों का उदय होने से उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, वो हम अभी 74 पेज पर देखेंगे। ये जो नया पैराग्राफ है शुरू होता है, देवों के वैक्रिय शरीर होता है जो 8 गुणों से युक्त होता है, यानी उनके अनिमादी रिद्धियां होती है। अनिमाद यानी अनिमा, महिमा, गरिमा, यहाँ लिखे सारे नाम, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। अब हर एक का हम अर्थ देखेंगे, यानी उनमें ऐसी ये सभी शरीर में ये योग्यताएं होती है और इसका वो यूज कर सकते हैं। अनिमा का अर्थ क्या है, अणि यानी अणु, अणु जैसा छोटा बना सकते हैं, इसको कहेंगे अनिमा रिद्धि। महिमा यानी बड़ा करना, तो मेरु समान बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे लाख योजन का हमारा जम्बूद्वीप है और उतना बड़ा ऐरावत हाथी बन सकता है, तो ये क्या है, बड़ा कर दिया। हाँ, उतना होता है वहाँ, यहाँ तो छोटा बन के आएगा। फिर गरिमा, गुरु यानी भारी, वजनदार, तो वज्र के समान भारी भी बना सकते हैं। लघिमा यानी लघु, हल्का, तो शरीर को ऐसा हल्का बनाएंगे, वो तो कॉबवेव होता है ना, उस पर चले तो भी वो कुछ टूटे नहीं, ऐसा हल्का भी बना सकते हैं। प्राप्ति यानी भूमि पर स्थित रहकर सूर्य चंद्र आदि को अंगुली के अग्रभाग से स्पर्श कर सके, ऐसी उनकी सामर्थ्य होती है। ये तो देवों के तो ये होता ही होता है, परंतु मुनियों के भी तप के कारण ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है। आपने सुना होगा कि वैक्रिक रिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे कोई मुनिराजों का नाम सुना है जिनके वैक्रिक रिद्धि थी? हाँ सर, आपको तो मालूम होना चाहिए। नहीं, विष्णु कुमार मुनि का नाम सुना है? देखो, एक बड़ा मुनियों का संघ था और उन पर बहुत बड़ा संकट आया था, क्योंकि वो बलि नाम का जो प्रधान था राजा का, उसने राजा को पूर्व अवस्था में कुछ हेल्प की थी, तो उसने वर मांग लिया था कि मेरे को 8 दिन का राज्य चाहिए। और जब मुनियों का, 700 मुनियों का वहाँ संघ आया, तो उन्होंने सभी ओर से बहुत बड़ी बड़ी अग्नि जलाकर उन पर उपसर्ग शुरू किया। रक्षाबंधन वाली ही है, हाँ। अकंपनाचार्य मुनि थे, उनका संघ आया था, तो भी वो कैसे दूर करे। तो ये विष्णु कुमार मुनि तो कहीं अन्यत्र रहते थे नहीं, अपने वन में वगैरह ध्यान में थे, तो उनके ये वैकी वृद्धि प्राप्त हुई थी, उनको भी पता नहीं था। किसी ने अवधि ज्ञान के द्वारा जाना और उनको जाकर नमस्कार करके प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे अपने मुनि संघ पर बहुत बड़ा संकट आया है, तो आप इसका निवारण कर सकते हो क्योंकि आपको ये रिद्धि प्राप्त है। उन्होंने हाथ लंबा करके देखा तो दूर तक गया, यानी वो औदारिक शरीर को ही छोटा बड़ा कर सकते थे। वो तो स्टोरी मालूम है ना?
नहीं मालूम
है, क्या कहते हैं,
डिटेल में बता।
हाँ, अच्छा, तो ये विष्णु कुमार मुनि ने, अभी तक तो मैंने डिटेल बताया ना, उपसर्ग वगैरह हुआ था, तो विष्णु कुमार मुनि को अन्य मुनि ने जाके नमस्कार करके उनको प्रार्थना की कि आप ये संकट दूर कीजिए, क्योंकि जैन धर्म पर और मुनि संघ पर संकट आया है। तो मुनि अवस्था में तो ये कार्य संभव नहीं था, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया, बटू जिसको कहेंगे, और कपड़े धारण किए। मुनि अवस्था तो रही नहीं उनकी ये संकट दूर करने के लिए, क्योंकि उनके तो दीक्षा का छेद हो जाता है, फिर दोबारा बाद में दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसकी तो बाद में आएगी। तो उन्होंने वो ब्राह्मण का रूप लिया, क्योंकि वो बलि वो ब्राह्मण था, तो उसके पास गया, तो उसने तो कुछ बड़े बड़े यज्ञ शुरू किए थे, तो कहा कि मुझे कुछ दान चाहिए तुमसे। तो बोलो, आप जो चाहे वो मांग लो, मैं तो राजा हूँ, मैं आपको कुछ भी दे सकता। तो मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। तो उन्होंने एक पैर उठाया तो पूरा मानुषोत्तर पर्वत पर जा गिरा, और फिर दूसरा पैर कहाँ रखोगे, तेरे सिर पर रखोगे, ऐसे करके इन्हें वो भी घबरा गया कि अभी क्या होगा, मेरा क्या होगा, बहुत क्षमा मांगी, फिर उसने वो सारा उपसर्ग दूर किया। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी वो कथा है। तो ये इनका उपसर्ग दूर किया, उनके वैक्रियक विद्या प्राप्त थी, तो उस वैसे तो वैक्रिया का उनको कोई यूज नहीं है, अपने कोई स्वार्थ के लिए तो उसका उपयोग करते ही नहीं है। तो ये होने के बाद फिर उन्होंने दोबारा मुनि दीक्षा अंगीकार की, क्योंकि ये कार्य तो मुनि योग्य तो था नहीं ना, कपड़े पहन लिए और ये जो कुछ करना पड़ा उनको, और फिर दोबारा मुनि दीक्षा अंगीकार करके मुनि दशा फिर उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। अकम्पनाचार्य तो अपने में लीन रहे, उपसर्ग होते हुए भी उसका सारा लक्ष्य छोड़कर वो सारे मुनियों सहित वो अपने आत्मा में लीन रहे थे। आपका कोई प्रश्न है?
वैदिक हिंदू धर्म में ये बात आती है, वामन अवतार।
हाँ, वामन अवतार कहते हैं, उसी को कहते हैं। हाँ। तो ये रक्षाबंधन की कथा है, यानी उन्होंने रक्षा की जिन धर्म की और मुनि संघ की, तब से ये रक्षाबंधन का अपने यहाँ त्योहार चलता है। अब ये तो हुआ प्राप्ति। तीसरा छठा नंबर है प्राकाम्य, यानी वो जैसे जल में तैरते हैं ना, कोई चल सकते हैं, तो वैसे पृथ्वी के अंदर से भी चल सकते हैं, और पृथ्वी के समान जल पर चलते हैं। क्या कहा? पृथ्वी के अंदर से यानी जमीन के अंदर से चल सकते हैं, और जल के ऊपर जैसे हम पृथ्वी पर जमीन पर चलते, वो पानी पर चलते हैं। ऐसे दोनों प्रकार की ये वैक्रिक विधि वालों को या वैक्रिक शरीर वालों को ये प्राकाम्य नाम की उनकी विधि होती है। एक है ईशित्व, ईशपना यानी प्रभुत्वपना, सारे जगत में अपना प्रभुत्व स्थापन करने की सामर्थ्य है। वशित्व यानी दूसरों को पूरे जगत को वश करने के लिए समर्थ होते हैं। ऐसे ये आठ गुण ये देवों में पाए जाते हैं, उनमें ऐसी समर्थपना पाए जाते हैं। सभी देवों में, सभी देव उनके वैक्रिक शरीर है तो उनके ऐसी शक्तियां होती हैं। अब तो ये जो हमने 10 भेद देखे ना, इंद्र वगैरह, ये तो पद के अनुसार हुए उनके स्टेटस। अब भवनवासी में 10 प्रकार के कुल पाए जाते हैं, क्योंकि हम बार बार असुर कुमार नाम लेते हैं, तो क्या अन्य भी कोई भवनवासी है उनके टाइप, तो उनके नाम यहाँ लिखे देखिए। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदरी कुमार, विद्युत कुमार, सनित कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वात कुमार। इन 10 प्रकार के भवनवासियों में से असुर कुमार हमने देखे थे, वो पंख भाग में रहते हैं। पहले दिन देखे ना हमने, पहले पृथ्वी के 3 भागों में से सेंटर वाला जो भाग है, वहाँ ये असुर कुमार जाति के देव रहते हैं, और बाकी 9 प्रकार के देव खर भाग में रहते हैं। व्यंतरों के भी 8 प्रकार पाए जाते हैं, जो हम बाद में देखेंगे आगे के। तो उसमें भी राक्षस नाम के जो व्यंतर है वो इस पंख भाग में रहते हैं, और बाकी 7 प्रकार ऊपर के खर भाग में रहते हैं। देखो आगे का पैराग्राफ देखते हैं। हमें तो वे ही व्यंतर पता है जो भूत बनकर हमारी टीवी सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, उन संबंधी कुछ अन्य मतियों की कल्पना जैसे उसको बताते हैं कि हमें वो भूत प्रेत उतना ही मानते हैं, है ना, वो तो उसको आत्मा आत्मा ही कहते हैं, हिंदी में तो उन्हीं को आत्मा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो उनकी सारी काल्पनिक कहानियां सुनते देखते हैं, परंतु जब उनकी आगमोक्त चर्चा सुनेंगे, आगमोक्त ने आगम में बताई हुई कि वो कैसे रहते हैं, उनके शरीर कैसे है, उनके महल कैसे है, उनके रत्न महलों का स्वरूप सुनेंगे, तो हमें भी व्यंतर बनने का विकल्प आएगा। परंतु कहते ऐसा विकल्प मत करना। देखो कभी भी ऐसा भी आपने सुना होगा, कोई भावलिंगी संत थे और परिणाम बिगड़ जाते, सम्यक तो छूट जाता है, मुनिपना छूट जाता है, और ये भुवनवासी वंतर आदि में इंद्र होकर जन्मते हैं, क्योंकि इंद्र तो ऑर्डिनरी कोई बनते नहीं है। जो पूर्व भूमि में जिन्होंने संयम प्राप्त किया था और छूटकर भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि सम्यक के साथ तो इन भुवनवासियों में जन्मते नहीं कोई, तो ये भुवनवासी असुर कुमार आदि के जो इंद्र सर्वश्रेष्ठ जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? तो जिनका संयम धारण किया था वो छूट गया था, इसे वो हो जाते हैं। देखो इसमें भी हरेक में जो अभी हमने 10 प्रकार देखे ना, असुर कुमार नागकुमार आदि, हरेक में दो दो इंद्र हैं, एक दक्षिण तरफ का एक उत्तर तरफ का। ये आपको ये टेबल पे दिखेगा 77 पेज पर। देखो ये मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि इसका यानी डिस्क्रिप्शन करना बहुत यानी बड़ा हो जाता, एट ए ग्लांस हम इसको देख सकते हैं। ऊपर क्या लिखा है, दक्षिण इंद्र के नाम और उनके भवन कितने हैं उसकी संख्या है, और उत्तर के तरफ जो इंद्र है उनके भी नाम और भवन। हम ऐसा देख सकते हैं कि असुर कुमार में एक चमर इंद्र है और एक वैरोचन इंद्र है, फिर उनके विमान कितने उसकी चर्चा की है। नाग कुमार में भूतानंद है, धर्मानंद है, ऐसे हरेक के वो कौन कौन से नाम है वो 10 के 10 यहाँ नाम बताए। तो ये भवनवासियों के इंद्र कितने हुए यहाँ पर, अमीर 10 लिखे हैं, हरेक के 2-2 20 हुए। तो जितने इंद्र होते हैं उतने ही प्रति इंद्र हुए, तो 20 और 20 40 हुए। यहाँ ये 10 टाइप है, कुल जो 10 प्रकार के हैं, व्यंतरों में 8 ही प्रकार के होते हैं। तो व्यंतरों में भी 8 × 16 तो इंद्र हो गए, 16 प्रति इंद्र हो गए, यानी इनके 40 इंद्र प्रति इंद्र, व्यंतरों के कितने हुए 8 × 32 हो जाएंगे, है ना? कितने हुए टोटल, 72। अब वैमानिकों के 16 स्वर्ग है, परंतु वहाँ इंद्र तो 12 ही होते हैं। अभी कौन से स्वर्गों में कितने उसकी बात आएगी, वैमानिकों में तो 72, और ये कितने हुए अभी 84। और फिर ज्योतिषियों में भी चंद्र इंद्र और सूर्य प्रति इंद्र, नहीं देखो ये 12 × 24 करना है ना हमको, उसके भी प्रति इंद्र लेना है। वैमानिकों के 16 स्वर्गों के 12 इंद्र और 12 प्रति इंद्र, 24 हो गए। हाँ, फिर चंद्र इंद्र और सूर्य इंद्र 98। और फिर मनुष्यों का जो राजा चक्रवर्ती है उसको भी इंद्र कहेंगे, और तीर्यंचों में सिंह को कहेंगे, या जो कोई अष्टापद होता है प्राणी उसको कहेंगे। ऐसे 100 इंद्र तीर्थंकरों के समोसरण में विद्यमान रहते हैं। आपने बहुत बार प्रवचनों में सुना होगा कि 100 इंद्र के हाजिरी में भगवान तीर्थंकर ऐसा फरमाते हैं, सुना है कि नहीं सुना, सीडी में सुनी होगी आपने। हाँ, तो ये 100 इंद्र हो गए। तो जब तीर्थंकर का समोसरण कहीं पर भी चल रहा है तो वहाँ ये 100 इंद्र वहाँ उपस्थित होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि एट ए टाइम बहुत सारे तीर्थंकरों के समोसरण चल रहे हैं। हाँ, वही आप कहते हैं ना, अभी तो 20 जगह तो चल ही रहे ना, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर है, तो 20 के 20 जनों का समोसरण तो चल ही रहा है अभी। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हर विदेह में एक एक, अभी हमने विदेह के भेद नहीं देखे है, एक मेरु संबंधी 32 विदेह है, 5 मेरु के 160 हो गए, भरत क्षेत्र भी 5 है और ऐरावत भी 5 है, तो टोटल 170। कभी कभी बाय चांस ऐसा होता है 170 तीर्थंकर एट ए टाइम विराजमान रहते हैं। ये कभी हुआ था मालूम है अपने यहाँ, हाँ अजितनाथ, आपने सुना है अजितनाथ भगवान के समय ऐसा हुआ था। तो ये सब इंद्र 70 जगह जाए, 170 जो प्लेसेस है वहाँ जाना है, परंतु उनके मूल शरीर तो वही ऊपर ही है, और वैक्रिया रूप लेके वैक्रिया के द्वारा शरीर बना के अलग अलग जगह चले जाते हैं, विक्रिया द्वारा चले जाते हैं।
अब सारे शरीर के अंदर हाँ
धर्मलाभ बहुत होता है, वो लाभ ले तो उसका फायदा होता है। उसमें से बहुत सारे जो दक्षिण के इंद्र तो नियम रूप से दूसरे भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, बाकी भी इंद्र उसमें से भी कुछ जाते हैं कुछ नहीं भी जाते। ये विक्रिया द्वारा ये अनेक शरीर धारण कर सकते हैं, उनके सहज रूप से ऐसी उपलब्धि है। आत्मा तो कंटिन्यूस रहता है, हमने देखा था उसके दो चार टुकड़े
नहीं होते।
देवलोक के क्या है, ये हम मनुष्य हुआ ये ज्यादा अच्छा है, हमें तो देवलोक की महिमा आती है क्योंकि उनके शरीर का वर्णन देखते हैं, उनके महलों का वर्णन सुनते हैं, तो हमें उनकी महिमा बहुत आती है। उनको अवधि ज्ञान होता है, अरे अवधि ज्ञान से तो ये मति शुद्ध ज्ञान अच्छा है क्योंकि हम मति शुद्ध ज्ञान में ही आत्मा का अनुभव करेंगे। ये देवलोक में कुछ नहीं रखा है क्योंकि पुण्य करता है उसका वैभव मिलता है, वैभव में मद बढ़ता है, वो विषयों को भोगने की लालसा होती है और उसकी वो इच्छा में वही इतना सागरों का आयुष्य है, परंतु वो कैसे बीत जाता है पता नहीं क्योंकि वो इतनी विषयों में मुगलता है। और फिर 6 महीने पहले पता चलता है अब यहाँ जाने का समय है, तो कितना रोना, कितना जिसको विलाप करना होता है, कितने संकलित परिणाम हो जाते हैं उनके। अब सबके नहीं होते हैं, समय दृष्टियों के नहीं होगे, परंतु बाकी तो होगे कि नहीं। उनको तो ऐसा अभी क्या करे, अभी वहाँ जाएंगे माँ के पेट में रहना पड़ेगा, अभी कितना दुख है, ऐसे उस कल्पना से वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अभी हम ये भवनों की बात हमने पहले छोड़ी थी कि बाद में देखेंगे, ऐसा लिखा था ये टेबल के नीचे देखो। इन भवनों का विस्तार जघन्य तो संख्यात करोड़ योजनों का, संख्यात करोड़ यानी अनेक करोड़ों योजनों का विस्तार है और ये महायोजन है। तथा उत्कृष्ट विस्तार कितना है, तो असंख्यात करोड़ योजनों का, मात्र असंख्यात नहीं कहा, असंख्यात करोड़ योजन। और हाइट हमने सबकी 300 योजन जितनी देखी थी भवनों की अंदर से हाइट। मध्य लोक के मध्य के असंख्यात द्वीप समुद्र छोड़कर बाहरी असंख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे के भाग में ये भवन पाए जाते हैं। अभी हमने मध्य लोक की रचना नहीं देखी है, उसमें हमारा जो मध्य का जम्बू द्वीप है उससे लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र पाए जाते हैं। तो बीच वाले असंख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे कोई भवन नहीं है, बाहरी और सारे भवन है उनके नीचे। ये चौकोर आकार वाले होते हैं और इनका बाहुल्य यानी उनके जो हाइट विड्थ है 300 योजन का है, अर्थात भवनों के छत इतने ऊंचे होते हैं। जैसे हमारी ये रूम, हमारा हॉल कितना ऊंचा है तो हम कहें नहीं यहाँ से यहाँ तक कितना फुट है, वैसे उनके भवन कितने हाइट वाले हैं, तो 300 योजन वाले। सुगंधित फूलों से शोभायमान इनकी रत्नमयी भूमि होती है, उसी प्रकार रत्नमयी भित्तियां होती है जो नित्य प्रकाश युक्त होती है, वो जमीन के अंदर होते हुए भी प्रकाश युक्त होते है। सभी इंद्रियों को सुखदायक चंदनादि वस्तुओं से ये भवन सिंचित होते हैं। प्रत्येक भवन के मध्य में 100 योजन ऊंचा पर्वत है और उसके ऊपर एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। प्रत्येक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं हैं जो रत्नों से निर्मित है, रत्न जड़ित नहीं हो, किसी ने बनाई नहीं है, शाश्वत है। और वो कितनी बड़ी है, तो 500 धनुष ऊंची पद्मासन, पद्मासन समझते हैं, जैसे यहाँ प्रतिमा जी है पद्मासन में विराजमान है, वैसे वो 500-500 योजन वाली है। ये तो हमने रत्नमयी और रत्न जड़ित इसमें डिफरेंस हमने कल परसों ही देखा था। अब हम आगे देखते हैं, ये 79 पेज पर आते हैं। ये जो चौथी लाइन के लास्ट में इन 10 भेदों की पहचान के लिए, ये जो भवनवासी जो 10 अलग अलग है, असुर कुमार है, नाग कुमार है, उदधि कुमार, जो जो कुछ है, तो उनके जो मुकुट है वहाँ के देवों के, उनके अलग अलग उसमें चिन्ह होते हैं, यानी मुकुट के चिन्ह हरेक के अलग अलग है, उनकी ध्वजाएं अलग अलग होती है, यानी उन पर भी चिन्ह होते हैं उनकी ध्वजाओं के ऊपर। हरेक के चैत्य वृक्ष अलग अलग होते हैं, चैत्य वृक्ष यानी उनके यहाँ जो वृक्ष होते हैं, हमने देखा था वो पृथ्वी का एक रचना होती है और उसके वृक्ष के नीचे जिन प्रतिमाएं होती है बहुत बड़े आगे मानस स्तंभ आदि होते हैं उसको कहेंगे चैत्य वृक्ष। तो ये चैत्य वृक्ष ने जो वृक्ष जैसी रचना है, जैसे हमारे यहाँ आम्र वृक्ष है, चंपक वृक्ष है, फिर भी ये तो वनस्पति का एक रचना है, और उनके यहाँ जो वृक्ष है वो कैसे है, रत्नमयी रचना है, परंतु उनको उन वृक्षों के नाम दिए हैं। तो हरेक के चैत्य वृक्ष भी अलग अलग है। चैत्य वृक्ष के मूल में प्रत्येक दिशा में पांच पांच पद्मासनस्थ जिन प्रतिमाएं होती है, प्रत्येक प्रतिमा के आगे उत्तुंग रत्नमयी मानस स्तंभ होता है। इस प्रकार एक एक दिशा में पांच पांच मानस स्तंभ होते हैं। प्रत्येक दिशा में हमने देखा है, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, हर एक जगह पांच पांच प्रतिमाएं और हर एक प्रतिमा के सामने एक एक मानस स्तंभ। उन मानस स्तंभों में एक एक दिशा में सात सात प्रतिमाएं होती है। हमारे यहाँ मानस स्तंभ है तो चार दिशाओं में चार प्रतिमाएं आपने देखी होगी शायद, तो इसके एक बाजू तो एक ही होती है, यहाँ तो कितनी, पांच पांच प्रतिमाएं, सॉरी सात सात प्रतिमाएं होती है। मैंने परसों देवगिरी की बात की थी, वो तो झांसी के पास जो है ललितपुर के पास देवगिरी नाम का एक छोटी सी हिल है, और वहाँ उत्खनन में बहुत सारी सैकड़ों हजारों मूर्तियां निकली है जैनियों की, और उसमें ये मानस स्तंभ भी है, उपाध्याय की वगैरह पंच परमेश्वरों की मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर है, देखने लायक है। मैंने वहाँ कुछ भी थोड़ी मिट्टी निकालो तो वहाँ तो मूर्तियां ही मूर्तियां निकलती हैं। हाँ, उस एरिया में बहुत निकलती, चंदेरी देवगिरी नाम है उसका। हाँ, झांसी के बाजू में। अच्छा, यानी वहाँ जाने लायक है, वहाँ मैंने यात्रियों के लिए भी अच्छी सुविधा है, वहाँ पर बहुत अच्छा है।
मानस स्तंभ की बात बताओ।
हाँ, मानस स्तंभ में वहाँ तो देवगिरी में जो मानस स्तंभ है उसमें एक एक साइड में पांच पांच प्रतिमाएं ऐसे दिखाई होती, यानी पत्थर में बनाई हुई है ना सारी, परंतु यहाँ जो बात है वो तो साथ साथ की है। ये उनके जो मुकुट के चिन्ह है, उनके जो चैत्य वृक्ष हरेक के नाम भी यहाँ बताए हैं। जैसे हम असुर कुमार के देखेंगे, उनके मुकुट में चूड़ामणि रत्न है और उनके चैत्य वृक्ष का नाम है अश्वत्थ। ऐसे हरेक के यहाँ नाम और उनके वृक्षों के भी नाम बताए हैं। अब आगे आते हैं हम, यहाँ ये पेज नंबर 80 पर नीचे का जो बड़ा पैराग्राफ है ना, असुर कुमार देवों की ऊंचाई 25 धनुष तथा शेष 9 प्रकार के देवों की ऊंचाई 10 धनुष है। असुर कुमार देवों का 15 दिन बाद एक बार श्वासोश्वास होता है तथा 1000 वर्ष के बाद एक बार आहार होता है। देखो, किसी भी देवों में कैसा उसका निकालना है प्रमाण, तो नियम क्या है देवों में, यह नियम है जितने सागर की आयु होती है उतने पक्ष जाने पर, यानी उतनी बार 15-15 दिन जाने पर, जैसे एक सागर की आयु है तो उतने ही पक्ष 15 दिन जाने पर श्वासोश्वास होता है तथा उतने 1000 वर्ष बीतने पर आहार होता है। नहीं समझे? जैसे 33 सागर का कोई देव है, तो 33 सागर का देव है तो कितने दिन बाद उनके श्वासोश्वास होगा और कब उनके आहार होगा?
15 दिन के बाद उसका आहार होगा।
हाँ,
अपना देव से 33 पखवाड़ी आहार लिए, यानी 33
जो ये भवनवासियों के खास लिए ये प्रमाण बताया है ना, यानी इतने हजारों वर्षों के बाद उनका आहार भी हो जाएगा। एक बात ठीक है नहीं? तो आगे देखते हैं। देखो, अब व्यंतरों की चर्चा करेंगे हम। भवनवासी के हमने 10 प्रकार देखे है ना, असुर कुमार वगैरह वगैरह। अब भवन व्यंतरों की चर्चा, इनकी संख्या असंख्यातों में होती है, ये अधोलोक तथा मध्यलोक में रहते हैं। अधोलोक में हमने देखे थे उनके भवन होते हैं, और मध्यलोक में क्या होते हमने देखे थे, अलग अलग सतह पर है उसको आवास कहते हैं, और जो जमीन के लेवल पर पृथ्वी पर होंगे उनके पुर यानी नगर होते हैं, उनको पुर कहेंगे, भवनपुर कहेंगे। भवनवासी और कल्पवासी देवों के हमने जाति अपेक्षा 10 भेद देखे थे, यानी इंद्र है, लोकपाल है, सामानिक वगैरह वगैरह। व्यंतरों में कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। उसमें क्या नहीं होते हैं? लोकपाल नहीं होते और त्रायस्त्रिवंश नहीं होते, बाकी सब होते हैं। तो 8 प्रकार इनमें भी पाए जाते हैं। अब जैसे हमने भवनवासियों में 10 तो पद यानी ग्रेडेशन देखे थे और 10 प्रकार के कुल देखे थे, असुर कुमार, नाग कुमार वगैरह। व्यंतरों में ग्रेड्स भी 8 होते हैं और उनके कुल भी 8 होते हैं। अब ये 8 कुल कौन कौन से हैं? तो देखो इसी पैराग्राफ में नीचे की 2 लाइन, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। उसमें भी हमने देखा इनमें से जो ये 6 नंबर के राक्षस नाम के जो है गंधर्व, वो पंख भाग में रहते हैं और बाकी के ऊपर के भागों में रहते हैं। उनके शरीरों का भी अलग अलग जो ये कुल है उनके शरीरों का भी अलग अलग वर्ण होता है, उनके भी चैत्य वृक्ष होते हैं। देखो भवनवासियों में भी उनके भवनों में चैत्य वृक्ष है, व्यंतरों के भवनों में भी चैत्य वृक्ष है। इनमें डिफरेंस क्या है? भवनवासियों के जो चैत्य वृक्ष है वहाँ 5-5 प्रतिमाएं होती है और यहाँ इनके 4-4 होती है हर एक दिशा में। वहाँ 5 प्रतिमाएं और हर एक के सामने मानस संबंध है, यहाँ 4-4 प्रतिमाएं हर दिशा में। यहाँ लिखा है ना इन वृक्षों के मूल में नीचे का पैराग्राफ, इसमें एक एक दिशा में 4-4 प्रतिमाएं होती है, भवनवासियों के वहाँ 5-5 होती है। यहाँ ध्वजा, तोरण आदि होते हैं, प्रतिमा जी के आगे मानस स्तंभ भी होते हैं। 3 पीठ पर मानस स्तंभ होते हैं। ये पीठ समझते हैं ना आपके, ये चांदी का बना के ऐसा सीधा है, फिर उसको ऐसा कटनी होती है, फिर ऐसा सीधा, फिर ऐसी कटनी, फिर ऐसा। फिर हमारे यहाँ वो स्कूलों में झंडा वंदन करते थे ना, उसके भी नीचे वो 3 पीठ बनाते थे। ऐसे मंदिरों में भी चांदी का बना के रखते, ऐसा गोल होता है, एक गोल के ऊपर दूसरा गोल, फिर तीसरा गोल, वो 3 पीठ कहते हैं उसको। वो ऐसे मानस स्तंभ 3 पीठ होते हैं। अब उसमें मोतियों की माला दिवे, उसका तो बहुत विस्तार से वर्णन है मूल ग्रंथों में, अभी हम उसको छोड़ेंगे आगे पढ़ेंगे। यहाँ भी कौन से 2-2 इंद्र है उनके नाम यहाँ पर भी बताए, शरीर का है ना, कौन सा वर्ण किसका कैसा है। बहुत ये जो मूल पुस्तक है उसमें इतना डिटेल वर्णन है क्योंकि एक एक जो देव है उसके टाइप अब देखने लगे तो 100-100 पेजेस तो एक एक का वर्णन है। अब उसको हमने कट शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा ही लिख दिया कि किसके वर्ण कैसे है, किनका नाम क्या है, उनके मुकुट के चिन्ह क्या है, उनके चैत्य वृक्ष कौन से है, यहाँ लिखे ना सब। हम अभी 82 पेज पर आते हैं। इन इंद्रों की 2-2 वल्लभी का देवांगना होती है और 1,000,000,000 परिवार देवांगना होती है। अब उनके देखो देवों में तो ऐसा वर्णन, उनकी जो मुख्य पट्ट देवी कहते, यहाँ जैसे पट्ट रानी कहते ना, वहाँ पट्ट देवी कहते हैं। पट्ट देवियाँ अलग और फिर वो कुछ वल्लभी का देवांगना अलग, उनकी और परिवार देवांगनाएं अलग, और फिर कुछ गणिका महत्तरी भी कहते हैं वो अलग। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों में हजारों में उनकी देवियां होती हैं। ये मिनिमम देवियां जो होती है ना, एक एक देव की 32 तो होती होती है। हमें एक भाई मिले थे तो मैं अभी ब्रह्मचर्य पालूंगा, क्यों मुझे देवगति में जाना है। क्योंकि वहां जाने पर मैंने सुना है कि 32 तो देवांगना मिलेगी। ये इस अभिप्राय को क्या कहेंगे। देखो व्यंतरों के जो इंद्र है ना उनके भी नगर होते हैं, पूरे यानी नगर होते हैं, उनके शहर के शहर बसते हैं। तो उनके जिन द्वीपों में उनके शहर है नगर है उनके यहाँ नाम लिखे 8। अब ये जो ऊपर तो हमने जो 8 प्रकार के इंद्रों के कुलों के नाम देखे, हर एक के अपने अपने नगर होते हैं। अब उसमें भी क्या है, एक विशेषता है उसमें।
हाँ, कहा गया है कि 15 दिन में 15 कोई 15 हफ्ते में पास देता है, पास छोड़ता।
हाँ, उनका अपना जो कुछ काल गणना करने का जरूर होना चाहिए ही। हमारा कैलेंडर वहाँ नहीं चलता, हम तो दिन और रात में एक 24 घंटे के हम एक दिन एक रात ऐसा सोचते, फिर हमें 6 घंटे है, 1 साल है, ऐसा हम यहाँ गिनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य का जो उगना और उसका जो अस्त होना है उसके अनुसार हम दिन की गिनती करते हैं। वहाँ चंद्र सूर्य तो है नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? बहुत अच्छा, वो मध्य लोक में हमारे यहाँ से केवल वो 900 योजन के ही नीचे भी है। मेरु पर्वत ही 1,00,000 योजन का है और उसके ऊपर स्वर्ग है। ख्याल में ऐसी बात? अब यहाँ अभ्यंतरों के भले यहाँ पर है, फिर भी उनकी काल गणना अलग है, क्योंकि उनके सारे पल्लों में उनकी जो आयु वगैरह होती है, असंख्यात वर्षों की आयु होती है, तो वहाँ जो कुछ काल गणना करना है या जो उनकी जो कितने साल बीते क्या जो नापना है, उनका अपना कुछ होगा, जरूर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा ही, कौन कितने साल का है वो वहाँ पर भी गणना होगी। जैसे हमारे यहाँ हमारे कोई जो पद्धतियाँ है वैसे उनकी अपनी पद्धति है। आपको कोई प्रश्न?
नहीं, वही आयु है इतने साल का, लेकिन वो हमारे काल में नहीं, दूसरा कोष्ठक।
नहीं नहीं, कोष्ठक अपने काल से ही वो 33 सागर वाले हैं, परंतु उसमें दिन रात का भेद नहीं है। मैं बताना चाहती हमारे 24 घंटे उनके भी 24 घंटे हो गए कि नहीं, पर उस 24 घंटे में हम 12 घंटे का बताते हैं, दिन और रात ये भेद है। ऐसा भेद वहाँ नहीं है, वहाँ कंटिन्यूएशन है ना, वहाँ दिन रात बिना कंटिन्यूएशन काल है।
उनको ये याद करके लेना पड़ता है क्या?
याद नहीं उनकी, वैसे अभी हमको याद करके लेना पड़ता है क्या? हाँ ये तो सहज है, क्योंकि इस शरीर की ऐसी जो है व्यवस्था वैसे वैसा होता है, दिन रात नहीं होते। कंटिन्यूस उनके वो कल्प वृक्ष से प्रकाश मिलता है और कंटिन्यूस चलता है उनका। और खाना पीना के अमृत तो झरता है, और कितने इतने हजार वर्षों के बाद झरेगा? सोना हमारे जैसे सोते नहीं है। ये जो 5 प्रकार की निद्रा है ना, त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला निद्रा और प्रचला, उसमें से ये जो 3 पहली मैंने बताई वो अत्यंत गाढ़ी निद्रा है, और निद्रा प्रचला कैसे तरल निद्रा है। तो देवों में ये 3 प्रकार की गाढ़ी निद्रा नहीं होती, हमारे जैसे वो 6-8 घंटे सोते नहीं है। तो जितना सोना है यहाँ सो लो। इसलिए स्वाध्याय में भी सो लेते हैं। देखो कौन से कर्मों के उदय कहाँ होते, ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है पूरी फिलोसॉफी में। अभी तो यहाँ अपने कर्म की थ्योरी नहीं ले रहे हूँ, इस कर्मकांड वगैरह पुस्तकों में इतनी डिटेल्स है कि कौन से गति के जीवों के कौन से कर्म बनते हैं, किसका उदय होता है, इतना साइंटिफिक है पूरा। क्या करें, अपने को टाइम नहीं ना पढ़ने को। पुस्तकें है हमारे पास अवेलेबल, पर अभ्यास कौन करेगा? लोग कहते हैं हमको मरने को भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत वाले ही मरते हैं ना। देखो ये 5 जो नगर होते हैं ना इंद्रों की बात है, ये जो वेंतरों के या कोई भी अन्य जो होते हैं देव उनके जो नगर है उनके 5-5 नगर होते हैं, एक सेंटर का और 4 दिशाओं में एक एक। उसके नाम भी बहुत मजेदार होते हैं, देखो हम देखेंगे यहाँ 82 पेज पर। अब उसी अभी हमने जो 8 प्रकार के व्यंतर देखे ना उसमें से किन्नर नाम के हैं, उसके बारे में यहाँ देखते हैं। वो अंजनक द्वीप में उनके नगर है, अभी उसमें भी कौन से इंद्र का नगर कौन से दिशा में है वो सब बताया है कि किम पुरुष इंद्र के नगर दक्षिण में है और किन्नर इंद्र के उत्तर में है, ऐसे सब में प्रत्येक के पांच पांच नगर होते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, एक एक इंद्र के पांच पांच नगर होते हैं, मध्य में एक और चार दिशाओं में चार नगर, यानी पूर्व में एक, पश्चिम में एक, दक्षिण में एक, उत्तर में एक। मध्य का नगर है उसे इंद्र का नाम देकर आगे पुर कहते हैं। अब किन्नर नाम का इंद्र है तो उसके मध्य नगर का नाम क्या है? किन्नरपुर। देखो, और पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के नगरों के नाम में इंद्र के नाम के आगे क्रम से प्रभ, कांत, आवर्त और मध्य शब्द लगाते हैं। अब ये शब्द लगाकर हम उनके नाम देखेंगे। जैसे सेंटर का है उसका नाम क्या है? किन्नरपुर। पूर्व दिशा में किन्नर प्रभ, दक्षिण दिशा में किन्नर कांत, पश्चिम दिशा में किन्नरावर्त और उत्तर दिशा में किन्नर मध्य। और प्रत्येक का विस्तार 1,00,000 योजन का है। एक नगर का हो, एक एक नगर इसमें। और ये यहाँ नहीं ना, उन्होंने वो द्वीपों के नाम बताए उसमें असं, ये तो नंदीश्वर द्वीप तक तो इनका नंबर ही नहीं, आगे जो असंख्यात योजनाओं के जो द्वीप वगैरह है तो उसमें इनका नंबर लगता है। कहीं कहीं इनके जो इंद्रों के नगर है तो ऐसे 1,00,000 योजन का तो एक एक नगर है, ऐसे एक बीच में और बाजू में चार एक एक। जम्बू द्वीप इतना एक नगर उनका। वे समतल भूमि पर है, जैसे हम जम्बू द्वीप पर है वैसे उनके अपने अपने द्वीपों पर नगर बसे हुए हैं। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र है उनमें विशिष्ट द्वीपों पर इनके नगर है। हम जहाँ रहते वहाँ नहीं है मनुष्य लोक में, बाहर बहुत आगे चलकर इनके द्वीप है, अलग अलग द्वीपों पर इनके नगर है। अर्थात पर्वतादि प्रदेशों पर या अन्य जगह नहीं है परंतु विवक्षित द्वीपों में भूमि पर बने। ये ख्याल में आएगा, हमने यहाँ जो पर्वत समुद्रों के ऊपर देखे थे वो आवास देखे थे। ये पांच पांच जो नगर बने हैं विशिष्ट द्वीपों में है, मनुष्य लोक में नहीं है। आगे चलता है
ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, का देख होता है क्या?
वो सब होता है, अवधि ज्ञान ही है और उनके वैसे वैसे सारे वहाँ के सीनियर्स भी गाइड करते होंगे। क्योंकि जैसे हमारे पास हमारे कुछ साधन उपलब्ध है वैसे उनके ही पास है। इसमें शास्त्रों में कितना बताएंगे, वो आत्मा की बात बताएंगे कि इतनी बाकी, फिर भी इतना बहुत सारा बता दिया। क्यों? क्योंकि इस विषय में क्या क्या है उसका थोड़ा ज्ञान हो जाता है। जैसे हम मनुष्य है वैसे वो देवगति के जीव है, वो कैसे रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या उनकी यानी व्यवस्था है, वो सब इसमें वर्णन आता है। अपना समय हो गया है, यही रुकेंगे हम। बोलो चौबीसो भगवान की।